हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहाँ जाकर माधवी ने राव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बार मेरे साथ आना, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। राव्या अपनी सास की बात कैसे टाल सकती थी। वो छत से उठी और फिर माधवी के पीछे पीछे जाने लगी, तो वहीं बाकी सबकी आंखों में हैरानी आ चुकी थी। माधवी को आज राव्या पर इतना प्यार कैसे आ रहा है, जबकि वो तो राव्या के आते ही चढ़ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वेहा ने स्माइल करते हुए कहा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस पार्टी में। वेदांत ने भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कमरे में ही खाना खिला दूंगा। इसके बाद वे दोनों भी अपने कमरे में चले गए। अनंत को भी अब ऐसा लग रहा था कि वो मणि और रूहान के बूच में कबाब की हड्डी बन रहा था, इसलिए वो भी वहां से उठा और फिर पार्टी में आए बाकी सब लोगों से बात करने लगा। उसे भी अपने बिजनेस को बड़ा करना था, इसलिए वो वेदांत के बिजनेस पार्टनर से खुद का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता था, ताकि इन फ्यूचर अगर उनसे कभी काम पड़े तो वे लोग उसे मना ना करें। उन सबके जाने के बाद मणि ने गहरी सांस लेकर फिर से रूहान की तरफ देखा, जिसकी नर्वसनेस अभी तक भी कम नहीं हुई थी। मणि ने प्यार से रूहान के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ किया और फिर स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ है प्लीज़ बता दीजिए। आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आऊँगी, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपको ऐसे उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रूहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं मैडम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि मैं क्यों नर्वस था। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं बताना है। मणि ने भी रूहान का ये अंदाज देखकर अब उसे ज्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। करीब एक घंटे बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। निमानी हाउस में आए मेहमान अपने घर जा चुके थे, जिसके बाद अब सिर्फ निमानी हाउस के मेंबर्स बचे थे। सब लोग इतने ज्यादा थक गए थे कि तुरंत ही अपने अपने कमरों में जाने लगे। मणि और रूहान भी अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी बीच में रूहान ने मणि का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैडम जी आपको कुछ दिखाना था मुझे, मेरी नर्वसनेस का रीज़न। ये सुनकर मणि की आंखें छोटी हो गईं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रूम में जाकर बता देना, या यहाँ हॉल में बताना है आपको। रूहान ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैडम जी आप कितने सवाल करती हैं, आप पहले मेरे साथ चलिए तो सही। मणि ने नैना में गर्दन हिलाई और फिर रूहान उसे घर के बैकयार्ड की तरफ ले गया। बाकी सब तो जा चुके थे, लेकिन अनंत को नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे राव्या का सामना करे। कल वो उसे छोड़कर चली जाएगी, ये रात उसे उसके साथ बितानी भी चाहिए या नहीं। कुछ सोचकर वो वहां से टेरेस की तरफ चला गया, क्योंकि रह रहकर उसकी आंखों में नमी आ रही थी और वो अपने आंसू राव्या को नहीं दिखाना चाहता था। वेदांत के कमरे में अलग ही जंग चल रही थी। विहा वेदांत से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके लिए खाना बनाए। बेचारा वेदांत पार्टी में इतना ज्यादा थक चुका था कि अब उसमें पानी उबालने जितनी भी हिम्मत नहीं थी, और उसकी टमाटर उसे खाना बनाने के लिए बोल रही थी। विहा ने लगभग रोते हुए कहा, आप मेरी छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते वेदांत, बस नूडल्स बनाने के लिए तो बोल रही हूँ, मुझे आपकी पार्टी का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो अब इसका हर्जाना आप ही भुगत देंगे। चाहिए और मेरे लिए खाना बना कर लाइए, वरना आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी। आखिरकार वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर विहा के माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है टमाटर, पहले तो अपने आंसू पोछो, मैं बनाकर लाता हूँ खाना। वेदांत की आवाज़ बुरी तरह थकी हुई थी, उसमें विहा से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए आखिरकार उसने नूडल्स बनाना ही सही समझा और वो तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। तो वहीं माधवी और राधिका दोनों अनंत के कमरे में थीं। वे दोनों राव्या से परेशान हो चुकी थीं, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद से उसे संभाल नहीं पा रही थीं। राधिका ने डरते हुए कहा, उनकी नई नई शादी हुई है, ऐसे हमें इस कमरे में रात को नहीं रहना चाहिए, कभी भी अनंत आता होगा, पता नहीं हम लोगों को यहाँ देखकर वो कैसा रिएक्ट करेगा, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। माधवी ने राधिका को गुस्से से देखते हुए कहा, क्या इसको हम इस हालत में यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। राधिका ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, जब बहू पर प्यार आना चाहिए तब तो आपको आता नहीं है, पर ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी बहू नजर आ रही है, सिर्फ दारू पी है इसने, जहर नहीं, मरेगी नहीं, और हम बोल देंगे हमें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, पहले तो निकलो यहाँ से। इस बार राधिका की बात में माधवी को थोड़ा लॉजिक नजर आ रहा था, तो वहीं राव्या ने मुस्कुराते हुए माधवी का हाथ पकड़कर कहा, सासूमा आपको पता है आप कितनी लकी हो जो आपको मिस्टर निमानी जैसा बेटा मिला है। माधवी ने अपनी कलाई से राव्या का हाथ छटकते हुए कहा, जब से आई हो तब से मिस्टर निमानी कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। ये सुनकर राव्या ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हाँ सासूमा मुझे भी लगता है मेरा दिल दिमाग सब कुछ खराब हो गया है, क्योंकि कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बहुत ज्यादा बदल गया है। आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आपको खून के आंसू आ जाएंगे। राधिका ने जल्दी से राव्या का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, पर मुझे नहीं लगता तुम अपनी सासूमा को रुलाना चाहती हो, इसलिए अपनी कहानी अपने पति को सुनाना। राव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मेरा पति कहाँ है, मुझे कब से मिल नहीं रहा है, आप लोगों ने देखा क्या, राधिका ने गहरी सांस ली और फिर माधवी के पास आकर बोली, अब चलिए यहाँ से। वैसे भी इस हालत में ये इस कमरे से बाहर नहीं आएगी, पर अगर निवेदिता भाभी ने देख लिया तो जरूर हम पर शक करेंगी। वैसे भी जब से उनकी बहू आई है तब से उनकी आंखें और कान ज्यादा ही सतर्क हो गए हैं, हम सब पर शक करने लगी हैं। चलो यहाँ से, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है। अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे इस उम्र में जेल नहीं जाना है। इतना बोलकर राधिका ने अपने बालों का बना खूबसूरत चूड़ा अपने हाथ से छुआ, जैसे अपनी जवानी पर इतरा रही थी। माधवी ने भी आखिरी बार राव्या को देखा और फिर तेज कदमों से उसके कमरे से जाने लगी। ये देखकर राधिका खुश हो गई और फिर वो भी लगभग दौड़ते हुए माधवी के पीछे पीछे अनंत के कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद वे दोनों अपने अपने कमरों में चली गईं। वहीं राव्या ने जैसे ही खुद को कमरे में अकेला पाया, उसका दिल घबराहट से भर गया। उसकी नशीली आंखें एक बार फिर अपने पति को ढूंढने लगी। फूलते कदमों से उठी और फिर अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोलते हुए कहा, क्या पतिदेव, आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? कहाँ हो आप? पर्सनल अलमारी को खुला ही छोड़ दिया और फिर जल्दी से सोफे के पास आते हुए टेबल का कपड़ा उतारा। उसने टेबल के नीचे देखा लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। ये देखकर तो राव्या का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी पड़ेगी कि मेरा पति गुम हो गया है, मुझे कोई मेरा पति ढूंढ कर दो। इतना बोलकर वो उठी और फिर लड़खड़ाते कदमों से ही कमरे से बाहर जाने लगी। बीच बीच में वो कभी टेबल से टकरा रही थी तो कभी दरवाजे से, लेकिन आखिरकार वो रेलिंग तक पहुंच चुकी थी। उसने रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर तेज आवाज में कहा, मिस्टर निमानी, कहाँ है आप? आपकी पत्नी आपको ढूंढ रही है, कोई मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, मुझे कंप्लेन करवानी है, मेरा पति गुम हो गया है।
वेदांत, जो विवाह के लिए नूडल्स बनाकर कमरे में ले जा रहा था, उसने जैसे ही राव्या की इतनी तेज आवाज सुनी, उसकी आंखें फैल गईं और उसकी नज़र सीधे अनंत के कमरे की तरफ गई। कमरे के सामने रेलिंग के पास खड़ी राव्या को देखा तो वेदांत की आंखों में हैरानी आ गई, क्योंकि राव्या की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था और वो बिल्कुल किसी पागल की तरह चिल्ला रही थी। ये देखकर वेदांत ने जल्दी से अपने हाथ में पड़ी प्लेट को वहीं हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर तेज कदमों से राव्या के पास जाने लगा।